नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। विभिन्न दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल अररिया और मुजफ्फरपुर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारण और सुपौल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में। लगभग 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और किशनगंज के पौवाखाली गांव में एक घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए विस्फोट की घटना में एक महिला और उसके तीन बच्चों की मौत, दो घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रोड शो कर मतदाताओं को अपनी ओर लुभा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को नहीं हटाया जाएगा। श्री शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे।
जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे, ये मोदी का गारंटी।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक उत्तरदायित्व दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपा वे आज संविधान की बात कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है, छुआ संविधान स्थायी है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोदी जी की सरकार ने ओबीसी के कमीशन को संवैधानिक दायित्व दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी और मजबूत किया है। तो ये लोग इमरजेंसी लगाने वाले, एडिटर्स को जेल भेजने वाले, जेपी लालू जी को, नीतीश जी को जेल भेजने वाले, क्या फालतू बात करते हैं।
जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुपौल और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने झंझारपुर में पार्टी प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में रोड शो भी किया। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार देने पर काम कर रही है।
हम लोगों ने तो 5 से लेके 20 तक में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। हमने तय किया 2020 में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब आप समझ लीजिए, 4 लाख तो हो गया, 1 लाख भी होने जा रहा है, 3 लाख का काम हो रहा है, वो भी हो जाएगा। और अगले बार जो हम लोगों का समय पूरा होगा तो आप समझ लीजिए 10 लाख तो होगा ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा होगा।
इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज मधुबनी, अररिया और सहरसा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मधुबनी में श्री यादव ने कहा कि इस बार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद भाजपा घबराई हुई है। श्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं, उनके करनी और कथनी में भारी अंतर। हम सब लोगों ने 10 साल उनको मौका दिया, बिहार से 40 में 39 सांसद प्रचंड बहुमत दे करके प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 10 साल में आज बिहार के लोग, मधुबनी के लोग हिसाब मांग रहे हैं कि भाई मधुबनी के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की समाप्ति के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराहट में हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।
एक खेमे एनडीए के मुख्य नेता माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले चरण से ही, शुरुआत से ही, और खासतौर पर जब पहला चरण समापन हो गया उसके बाद से ही बहुत घबराहट में नजर आ रहे हैं, और घबराहट का जो परिचायक हमें दिख रहा है वो सबसे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि उससे बाद से वो पुराने अपने आरएसएस के एजेंडे पर आ गए, और उनकी जो चिर परिचित आदत है वो आदत पूरा देश अब समझ चुका है कि वो बहुत झूठ बोलते हैं।
वामपंथी दल के नेता भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आरा से भाकपा माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के पक्ष में वामपंथी प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की सदस्यों ने सभा का आयोजन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कहा कि काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह या तो चुनाव मैदान से हट जाएं या फिर पार्टी उन्हें निष्कासित करेगी। आज आरा में पत्रकारों से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र और जदयू के महासचिव अजीत कुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री कुमार के राजद में शामिल होने की संभावना है। इधर राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर आज राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल बिहार दौरे पर रहेंगे। श्री नड्डा अररिया और मुजफ्फरपुर में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं श्री राजनाथ सिंह का सारण और सुपौल लोकसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अब सुनते हैं राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला। आज बात सुपौल लोकसभा सीट की। सुपौल बिहार के उन 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
कोसी नदी के मध्य स्थित सुपौल संसदीय क्षेत्र की राजनीति और चुनावी समीकरण भी कोसी के स्वभाव से मेल खाता है। एक निश्चित समय के बाद कोसी की धारा की तरह संसदीय क्षेत्र भी नया रुख अख्तियार करता है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो मतदाताओं ने हर बार नए चेहरे को मौका दिया। इस बार जदयू ने निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामेत पे भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। उनके मुकाबले हैं राजद के चंद्रहास चौपाल से। पिछली बार जदयू उम्मीदवार का मुकाबला कांग्रेस की रंजीत रंजन से था। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद यह पहला मौका है जब इस सीट पर कांग्रेस की जगह राजद का कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। श्री चौपाल पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर विधायक चुने गए थे। भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी वैद्यनाथ मेहता भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो सुपौल लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सुपौल जिले के अंतर्गत आने वाले 4 विधानसभा क्षेत्रों निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज पर जदयू, जबकि छातापुर विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है। मधेपुरा जिले के अंतर्गत आने वाला सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र राजद के कब्जे में है। पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ इसी सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए से जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामेत और इंडी गठबंधन से राजद उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल के बीच है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार वैद्यनाथ मेहता भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। जदयू उम्मीदवार जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वहीं राजद उम्मीदवार महंगाई, बेरोजगारी, कोसी के बाढ़ के स्थायी समाधान समेत अन्य स्थानीय मुद्दे को लेकर घेराबंदी करने में लगे हैं। रोचक मुकाबले में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि पुराने इतिहास की तरह क्षेत्र के मतदाता किसी नए चेहरे पर विश्वास जताते हैं या फिर पुराने चेहरे पर ही भरोसा कायम रखते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से मैं रविशंकर चौधरी।
पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भागलपुर, पूर्णिया, शेखपुरा और अररिया जिले में भीषण लू की स्थिति बनी रही। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, बांका और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति रही। अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि हवा के रुख में परिवर्तन होने से अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
अगले 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। शुष्क हवा के कारण बिहार में इन हवाओं का असर पिछले दिनों के अपेक्षा कम रहेगी। सुबह और शाम में थोड़ी ठंडक रहेगी।
भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आज आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। श्रीमती चक्रवर्ती को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कई मीडिया संगठनों में काम करने का व्यापक अनुभव है। जाने माने सर्जन और पीएमसीएच के सर्जरी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का आज पटना में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद अखिल भारतीय सर्जन एसोसिएशन के बिहार शाखा के अध्यक्ष भी रहे थे। चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि उनके निधन से चिकित्सा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। चिकित्सकों और समाज के गणमान्य लोगों ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पौवा खाली गांव में एक घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए विस्फोट के चलते एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर कटिहार जिले के पारसोई प्रखंड अंतर्गत मदारगाछी गांव में आग लगने से 300 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई। वहीं जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगा पंचायत में आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गए। दूसरी तरफ शेखपुरा जिले के चेवारा प्रखंड अंतर्गत बेलकुंडी गांव में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस सिलेंडर में आग लग जाने से एक महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से झुलस गयी। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के मिर्जापुर टी गांव में अपराधियों ने अधिवक्ता विष्णुदेव महतो की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि अधिवक्ता कोर्ट जाने के लिए निकल रहे थे, तभी अपराधियों ने घर घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। इधर इस घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने 7 दिनों के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर अदालती कामकाज के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आडलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिक भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राज्य में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। विभिन्न दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल अररिया और मुजफ्फरपुर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारण और सुपौल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में। लगभग 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और किशनगंज के पौवा खाली गांव में एक घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में हुए विस्फोट की घटना में एक महिला और उसके 3 बच्चों की मौत, 2 घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।